ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
கிந்து நிர்குண நிராகார பரமாத்மா குச் நஹி கர் சக்தா ஹை, வோ ஷவ் கே சமான் ஹை. இஸ்லிய ஷவ் கோ ஷவ் கஹா தியா ஹை. शव में यदि इकार हटा दीजिए तो शव होता है, इसलिए इकार हां शक्तिवाचक, इकार को शक्तिवाचक मानते तो वो शिव बनाते. तो निर्गुण निराकार परमात्मा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो निर्गुण निराकार परमात्मा का नाम है अक्षर ब्रह्म कहते हैं. बृहदारण्यक उपनिषद में उसको अक्षर ब्रह्म कहा. अक्षर का मतलब जो आप लिख रहे काका की वो अक्षर नहीं. अक्षर बोल तो न क्षरति इति अक्षरः, जो कभी भी क्षर नहीं होता है, जो नाश नहीं होता है, उसका अभाव नहीं होता है, वो अक्षर है. वो है हमारा स्वरूप है, सबका स्वरूप है. वहां पहुंचना है हम लोगों को, पहुंचना नहीं जानना है उसको, भूल गए. तो इसलिए शास्त्र वहां ले जाने के लिए आपको मान रहे, वही जो परमात्मा है माया के साथ संबंध हुआ. कभी से हुआ पहले बता, अनादि. उसका कोई उत्तर नहीं, कोई नहीं दे सकता है, अनादि है वो. तो माया के साथ संबंध होते हुए वो बन गया ईश्वर. देखिए अक्षर ब्रह्म था, माया के साथ संबंध हो गया, इसलिए उस ईश्वर को कहते कारण ब्रह्मा. सारा जगत का वही कारण बन रहा है, माया के साथ संबंध होते हुए जगत का कारण बन गए. उसके बाद उन्होंने जगत को बना दिया. यतो व इमानि भूतानि जायन्ते तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश सम्भूत. सबसे पहले अपंचीकृत पंच महाभूतों को बनाया उन्होंने. अपंचीकृत का मतलब उसमें अभी तक कोई मिलावट नहीं हुआ है, बिना मिलावट से बना दिया ईश्वर ने. तो अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न होने के बाद उसके बाद उसका तादात्म्य हो गया, तभी उसको कहा गया कार्य ब्रह्मा. माया है कारण मूल, उसके साथ तादात्म्य होने से उसी ब्रह्म का नाम क्या बड़ा, कारण ब्रह्म. और उसने अपंचीकृत भूतों को बना दिया, उसको तन्मात्र भी कहते शास्त्रीय भाषा से, अथवा सूक्ष्म भूत भी कहते. भूत का मतलब ये भूत पिशाच नहीं लेना, पंचभूत. हमारे अंदर एक भूत नहीं पांच पांच भूत है. एक भूत से व्यक्ति डर जाता है, पांच भूत जहां बैठे वहां कितना डर होगा. तो इसलिए पांच भूतों से डरना, एक भूत से नहीं डर सकते. देखिए अत्यंत जो भूख लग जाती है वो व्यक्ति भी भूत से नहीं डरता है, क्योंकि उसके जो भूख है वो सता रहे वो भूत को भी भूल जाता है. जैसे कोई एक व्यक्ति था, बहुत भूखा था, भोजन मिला नहीं बहुत दिन तक, जा रहा था जंगल में. उसी से पड़ोसी में एक गांव था, तो वहां कोई ब्रह्म राक्षस का कोई उपद्रव हो रहा था. ज्योतिष को दिखा दिया, ज्योतिष ने कहा आपके वहां कोई ब्रह्म राक्षस का उपद्रव हो रहे, इसलिए सब मिलके गांव वाले उस ब्रह्म राक्षस को शांत कर दीजिए. उसके लिए क्या बढ़िया खीर रोटी पूड़ी बनाकर जंगल में एक जगह रखिए, और काला पीला पानी करके दीपक रख के उसकी पूजा करके उससे प्रार्थना कर दीजिए. ज्योतिष ने बता दिया, गांव वाले सब मिल गए, खीर पूड़ी बना दिया. रात्रि में जाके जहां रास्ता तीन जुड़ जाता है वहां रख दिया, अभी भी प्रता है, और हल्दी पानी काला गिला रख दिया तंत्र मंत्र करके दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की और गांव वाले गए। उतने में वो भूखा व्यक्ति घूमते घूमते वहीं पहुंच गया। अब उन्होंने देखा बहुत दिन से भोजन नहीं किया, देख रहे यहां तो बढ़िया गरम गरम भोजन पड़ रहे, तो खाने शुरू किया। उतने में वहां ब्रह्म राक्षस आ गया, पहुंच गया, हाथ पकड़ दिया उसका, तो दूसरे हाथ से खाने शुरू किया उन्होंने, दाया हाथ से खाने लग गया तो दाया हाथ भी उसका पकड़ दिया, जैसा मुंह से खाने लग गया जैसा कुत्ता खाता है। ये ब्रह्म राक्षस ने सोचा ये तो मेरे से ही बड़ा ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस भाग गया। तो कहने का तात्पर्य है आपके अंदर एक ब्रह्म राक्षस नहीं, एक भूत नहीं, पांच भूत है। उससे डरने का अवश्य नहीं, पांच भूतों से डरना है। तो इसलिए जो सबसे पहले जो माया के साथ संबंध हो गया, तभी उसी जो ब्रह्म का नाम ईश्वर पड़ गया, कारण ब्रह्म कहते, और उसके बाद ये अपंचीकृत अतः जिसमें कोई मिलावट नहीं वो उत्पन्न हुआ, तभी उसके साथ संबंध होने से उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ कहा गया, अर्थात कार्य ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, उपाधि को लेके हो रहे हैं। जैसा मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम है, अभी राम यदि भोजन बना रहे उसको आप कहेंगे पाचक कहेंगे, और यदि खेल रहे उसको कहेंगे आप क्रीड़क कहेंगे, और यदि गाना बजा रहे उसको गायक कहा दिया। क्या राम में कोई अंतर हो गया? उसी उसी क्रिया के साथ वो तादात्म्य होने से वो नाम पड़ा। राम तो एक ही है व्यक्ति, अथवा पंचदश में स्पष्ट दृष्टांत दिया, एक ही व्यक्ति है, हाड़ मांस से बनाया हुआ एक ही पुतला है श्री का, वो किसी की बेटी है और किसी की पत्नी है, किसी की बहन है और किसी की पोती है, वस्तु में कोई अंतर नहीं, किंतु व्यवहार में अंतर आया। जैसा जैसा नाम संबंध हो गया व्यवहार भी अंतर आ गया, किंतु श्री का स्वरूप में कोई अंतर नहीं। जैसा भगवान ने बनाया हाड़ पुत्र का मांस वैसा है, पति अलग रूप से व्यवहार करेगा, भाई दूसरे रूप से व्यवहार करेगा, पिता अलग रूप से करेंगे और उसका जो देवर अलग रूप से करेंगे, व्यवहार अलग हो रहे, वस्तु एक है। वैसे ही परमात्मा एक है, दो हो ही नहीं सकता है। माया के साथ संबंध होने से वो ईश्वर हो गया, व्यवहार अलग हो गया, जगत को बना दिया अपंचीकृत, और उसके साथ संबंध होने से उसका नाम बड़ा कार्य ब्रह्म। अभी तक कारण ब्रह्म था, कार्य ब्रह्म हो गया, हिरण्यगर्भ का। और उसके बाद उन्होंने मिलावट शुरू किया। अभी जो मिलावट करते वो गड़बड़ नहीं, उन्होंने किया है, हिरण्यगर्भ ने किया है। अपंचीकृत पंचभूतों को मिला दिया, जो पंचीकरण किया। पंचीकरण का मतलब हर एक वस्तु में पांच चीज है, जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं अभी उसमें सब मिलावट है, पांच है। जिस धरती के ऊपर हम बैठे हैं पृथ्वी, उसमें भी पांच अंश है, आधा अंश है पृथ्वी का और एक बट्टा आठ अन्य चार का रहेगा। तो एक बट्टा आठ चार मिलाने से क्या होगा? वो पुनः आधा हो जाएगा, इसलिए आधी पृथ्वी है, एक बट्टा आठ दूसरा है। ये जो आप युक्ति के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसा कोई योगी है जल में पद्मासन डाल के बैठता है, सुना होगा आपका दरवाजा बंद है चारों तरफ से, भूत आया कहां से? अंदर। दरवाजा तो आपने खोला नहीं किंतु कमरे में भूत आ गए, बोलते कहां से आया? खिड़की भी बंद है, दरवाजा बंद है, कहां से आया? कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। और योगी जो जल के ऊपर बैठ रहे, जल में कैसा बैठेंगे? इसलिए जल में जो पृथ्वी है 1/8 अंश, उसके ऊपर बैठ रहे वो, जल में नहीं। हम क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि हमारा शरीर में गुरुत्व है, भारीपन है। जल के अंदर रहने वाली पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, डुबा देंगे। योगी का शरीर इतना हल्का हो जाता है, जल के अंदर रहने वाले 1/8 पृथ्वी है उसमें भी बैठ सकते हैं। कमरे के अंदर भूत कहां से आया? जगह तो चाहिए। इसलिए जो दीवार के अथवा खिड़की के अंदर जो आकाश है 1/8 है, पैक है, किंतु उसमें भी आकाश है। हम लोग उस आकाश से नहीं जा सकते, भूत और योगी लोग उसी आकाश से आ सकते, बिना आकाश से नहीं आ सकते हो। तो कहने का तात्पर्य, सारा जगत पंचीकृत है। तो पंचीकृत करने के बाद उसी का नाम, उसके तादात्म्य होने से उसको विराट कहा दिया। देखिए, आपका एक ब्रह्म कहां से आ गया? एक था, माया के साथ संबंध होने से ईश्वर कहा दिया। उन्होंने अपंचीकृत को बना दिया, कार्य हो गया, कार्य ब्रह्म कहा दिया, हिरण्यगर्भ। उन्होंने मिला दिया, सूलभूत हो गया, उसको विराट कहा दिया। एक तत्व है, दो नहीं। वस्तु एक है, उपाधि अलग है। एक स्थूल उपाधि होने से उसको विराट कहा दिया, सूक्ष्म उपाधि होने से उसको हिरण्यगर्भ कहा दिया, कारण उपाधि होने से उसको ईश्वर कहा दिया, वो तीनों से रहित हो गया, वो अक्षर ब्रह्म कहा दिया। वही वास्तव में तत्व है, उसी को जानना है। उसको जानने के लिए ही उपनिषद है, ये उपनिषद उसको ही बोध करवा रहा है। इसलिए हम लोग विचार कर रहे ऐतरीय जो उपनिषद है, अर्थात रहस्यमय विद्या है। रहस्य तो यही है, उपनिषद क्या बता रहा है? यही रहस्य, एक परमात्मा है, उपाधि के द्वारा यहां तक आया। तुझे इन उपाधियों में अटकना नहीं, उपाधि में अटक करके भटकना नहीं, ये उपाधियों को छोड़ते छोड़ते आपको वहां जाना है। एक एक करते हुए, उपाधियों को अलग करते हुए आपको वहां पहुंचना है। पहुंचना नहीं, स्थित होना है। जहां है वही स्थित होना। अभी हम भटक रहे, स्थित नहीं है, स्थिर नहीं है। ये जो उपाधि में भटक रहे, माया से बनी हुई जो उपाधि, उसमें भटक रहे, उसमें भटके तो कहां से मिलेगा? इसलिए भटकने के कारण अटक भी जाते हैं हम लोग। इसलिए उपनिषद ये बता रहे, तुम भटक रहे हो और अटक रहे, इसलिए तुम स्थिर हो जाओ। कहां स्थिर हो जाओ? जो अपना स्वरूप में, ये उपनिषद बता रहे। इसलिए उपनिषद जो बता रहे, पहले हम मंगलाचरण कर रहे। मंगलाचरण भी होता है, मंगलाचरण बोल तो कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें विघ्न ना आ जावे, उस विघ्न को हटाने के लिए मंगलाचरण होता है। चाहे तो ये वस्तु निर्देशात्मक हो, आशीर्वादात्मक हो, अथवा नमस्कारात्मक, तीन प्रकार के मानते। नमस्कारात्मक उसको कहते हैं, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके सामने वाले को बोलते, मैं आपसे छोटा हूं। ये जो मंगलाचरण है, ये नमस्कारात्मक कहते हैं। और एक अपना इष्ट अथवा गुरु से आशीर्वाद मांगना, उसको आशीर्वाद मंगलाचरण बोलते हैं। और एक केवल जो बताने वाला वस्तु है उसको प्रतिपादन करना, वस्तु निर्देशक मानते। इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं आसुटी में। पहले मंगलाचरण दीजिए। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाची प्रतिष्ठिता, मावीरार्वीर्मा वेदस्य मा अनिष्टः ऋतं मे मा प्रहाशिः अनेन दीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मा अवतु मा अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये ऐतरीय उपनिषद का मंगलाचरण है। यहां बता रहे ओम ओम परमात्मा का वाचक है, क्योंकि योग सूत्र में कहा दिया है, सबसे पहले कहा दिया है वहां योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग किसको कहते हैं? चित्तों की जो वृत्तियां है, हमारा चित्त में अनेक प्रकार की वृत्ति चल रही, जैसा समुन्द्र में जो तरंग आ रहे वैसे ही हमारा अंतकरण में तरंग आ रहे, ये वृत्तियां है। सुबह से सायंकाल हम सोते हैं, एक दिन डायरी रख दीजिए, गिन लीजिए मेरे अंदर कितना वृत्ति आ गए, नहीं गिन सकते आप, इतनी ही वृत्ति आ रहे अनगिनती, हर क्षण में कोई ना कोई नया नया विचार, वृत्ति को गिन नहीं सकते। तो भी योग सूत्र में वृत्तया पंचतव्य पांच मान है, प्रमाण विपर्याद। तो ये जो वृत्तियों को निरोध करना, हमारे अंतकरण में उठने वाले तरंग रूप वृत्तियों को निरोध करना, यही योग है। कैसा कर सकते? वहां पतंजलि ने बताया, अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधा। अच्छा, कोई अभ्यास और वैराग्य इतना नहीं कर सकते, वैराग्य तो आवश्यक है, वैराग्य के बिना नहीं चलेगा, किंतु तीव्र वैराग्य नहीं। वैराग्य के श्रेणी भी अलग है। किसी के मन में शंका हो सकती है, महाराज मेरे अंदर वैराग्य क्यों नहीं आ रहे? वैराग्य है आप लोगों का अंदर, किंतु कौन सा कैटेगरी का है वो देखना चाहिए। वैराग्य भी दो है, एक अपर वैराग्य एक पर वैराग्य है। अपर वैराग्य को चार भाग में विभक्त है। सबसे पहले यतमान संज्ञा, यतमान संज्ञा नाम का वैराग्य है। तो यतमान संज्ञा उसको कहते हैं, ये सारा संसार क्या है, नष्ट होने वाला है, दुखदायक है, हम देख रहे हैं। ये संसार को चलाने वाला कोई एक तत्व है, उस तत्व को जानने के लिए आप गुरु के पास स्वाध्याय अथवा सत्संग में प्रवृत्त हो रहे, ये है यतमान संज्ञा। इसलिए यतमान संज्ञा सबके अंदर है, हम लोगों एक सीढ़ी में हम चढ़े, यतमान संज्ञा। अन्यथा यहां क्यों आते स्वाध्याय और सत्संग सुनने के लिए? किंतु आगे है व्यतिरेक संज्ञा, वहां अटक जाते। व्यतिरेक संज्ञा का मतलब अलग करना, छांटना। जैसा बाजार में गए कोई फल खरीद करते, क्या करते, अच्छे अच्छे फल लेते खराब छोड़ देते, ये नहीं चाहिए। सब्जी खरीद करते उसको भी छांटते। हम बाहर तो छांट रहे, हमारे अंदर क्यों हम नहीं छांट रहे? हमारे अंदर षट रिपु है, छह शत्रु बहते हैं, काम क्रोध लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्न अपहरणाया तस्मा जाग्रही जाग्रही। ज्ञान रत्न को अपहरण कर रहा है। तो हम विचार नहीं करते मेरे अंदर पहले काम कितना था, क्रोध कितना था, लोभ कितना था, अब कितना कम हो रहे, क्यों नहीं को हो रहे? यदि नहीं हो रहे तो कैसा हटा सकते हैं? ये जो विचार किया जाता है इसका नाम व्यतिरेक संज्ञा। इसमें हम विचार नहीं करते। हम सत्संग सुन रहे, स्वाध्याय कर रहे, पहले और हमारे अंतर आ रहे, यदि नहीं है तो उसमें दोष क्या है, कैसा हटा सकता हूं, उपाय क्या है, ये अलग जो करते हैं इसी का नाम व्यतिरेक संज्ञा। उसके बाद आप दो सीढ़े में चढ़ गए, व्यतिरेक तो आ गया। तीसरी है एकेंद्रिया। अभी तक हमारे जो पांच ज्ञानेन्द्रिय है, पांच विषयों को चार है, आंख ये चाहता है कोई सुंदर रूप को देखे, कान ये चाह रहे कोई सुंदर शब्द सुने, हमारी जिह्वा चाह रहे कोई बढ़िया मिठाई को स्वाद ले, और हमारे नाशिका चाह रहे सुगंध को सूंघे, हमारे त्वग इंद्रिया चाह रहे कोई सुंदर स्पर्श करे, ये बाहर से। और वैराग्य के द्वारा इनसे तो नफरत हो गए, उनको हटा दिया, आंख नहीं देखना चाहता कितना भी सुंदर आने पर, कान सुनना नहीं चाहता है, नाक के द्वारा सुगंध ग्रहण नहीं करना चाहता है, जिह्वा के द्वारा रस को भी नहीं ग्रहण, ये सब हटा दिया, किंतु मन में पड़ा है अभी, सबको समेट करके मन में डाल दिया, अभी एक में डाल दिया। आपने सुंदर रूप से आंख को तो हटा दिया, किंतु अंदर मन में वासना पड़ी है सूक्ष्म रूप से, शब्द सुनने की आपको इच्छा नहीं है किंतु उसमें संस्कार पड़ा है, एक इंद्रिया आता मन मात्र मेरा, बाहर से समेट करके अंदर तक गए आप, किंतु इतने से भी काम नहीं चलेगा, आपको वशीकार संज्ञा चौथी सीढ़ी है, मन से भी हटाना पड़ेगा, तो मन से भी हटा दिया, ये है अपर वैराग्य। यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्र संज्ञा और वशीकार संज्ञा। इससे हम यदि पार हो गए तभी जाके परावैराग्य। परावैराग्य का मतलब ब्रह्मलोक तक उपेक्षा नहीं चाहिए। आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनरावर्तते अर्जुन, वहां से भी वापस आना चाहिए। इसलिए वहां बताया अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधा। इन वृत्तियों का निरोध किससे किया जाता है? अभ्यास और वैराग्य से। मान दीजिए जिसके अंदर वैराग्य तो है, इतना तीव्र नहीं है, उसके लिए क्या कोई मार्ग नहीं, उसका कल्याण कैसा होगा? शायद बोले घबराओ मत, ईश्वर परिधाना दुआ, ईश्वर के शरण में जाओ। ईश्वर के शरण में जाना भी सरल नहीं है, वो भी कठिन है। ईश्वर परिधान तो हाँ, जिज्ञासा होगा ईश्वर को इसको कहते, तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का वाचक प्रणव है। एक होता है वाच्य अलग है, वाचक अलग है। वाचक कहते हैं शब्द, वाच्य कहते हैं अर्थ। जैसा आपने कहा घर में जाके बच्चे से, अरे बच्चा एक ग्लास जल लाओ, ये जो आपने कहा शब्द से, ये शब्द सुनने के बाद बच्चा क्या है, जल ले आता है। आपका शब्द ने उसको अर्थ का बोध करवाया, उसको कहते वाच्य। घट कहा दिया, ये अपने शब्द क्या, उसमें चार अक्षर है, दो हल है दो स्वर है, घ अ ट अ, चार अक्षर मिलके घट बना है। घ ये व्यंजन है, घ के बाद आ है स्वर है, ट व्यंजन है, आ है स्वर है, तो दो स्वर और दो व्यंजन है, घट एक पद बना, ये हो गया वाचक। अभी घट लावो कहा तो दो शब्द लिख के थोड़ा लाता है कोई, जो गोलाकार है मिट्टी से बना है उसको लाता है, ये वाच्य है। इसी प्रकार ईश्वर है वाच्य है, और उसका वाचक नाम कौन है, ओम है, तस्य वाचक प्रणमा, इसलिए हम बोल रहे ओम बोल रहे सबसे पहले। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, इसके ऊपर हम कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।